प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 जून 2016 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन पांच नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं राहुल वंशवाल उज्जैन मध्य प्रदेश से, श्रेया यादव भोपाल मध्य प्रदेश से, अखिलेश मौर्य बहराइच उत्तर प्रदेश से, उमा गुप्ता ग्वालियर मध्य प्रदेश से और पुष्पक कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। तो राहुल, श्रेया, अखिलेश, उमा और पुष्पक, आप सभी पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही दो महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं। पहली सूचना तो यह है दोस्तों कि आपको मालूम है कि सितंबर अक्टूबर में अभी 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं जिसकी सारी डिटेल्स वेबसाइट पर दी हुई है और इसके काफी पिछले समय से रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं। तो मुझे ये बताने के लिए कहा गया है कि अब सितंबर अक्टूबर के बैच के लिए कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं, इसलिए जो स्टूडेंट सितंबर अक्टूबर के बैच में आना चाह रहे हैं तो वो जितनी जल्दी हो सके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और यह बात मुझे इसलिए भी कहनी पड़ रही है फ्रेंड्स कि जब रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाते हैं उस समय बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं, बार बार रिक्वेस्ट आती हैं लिखित में भी और फोन पर भी, और सच पूछे तो उस समय उनको मना करने में हम लोगों को बहुत दुख होता है, बहुत परेशान तकलीफ होती है। लेकिन अपने आप में हमारी मजबूरी यह होती है कि उस समय हम उनकी कोई भी मदद करने की स्थिति में नहीं रह जाते, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनका अधिकार पहले बनता है और सीट्स लिमिटेड ही होती हैं। तो इसलिए मित्रों, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि कुछ ही सीट्स सितंबर अक्टूबर के बैच के लिए बाकी हैं। जो स्टूडेंट्स इस बैच में आना चाहते हैं प्लीज वो जितनी जल्दी हो सके अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। दूसरी सूचना है फ्रेंड्स कि आपने देखा है कि अभी कुछ प्रोग्राम्स खासकर प्री एग्जाम को लेकर के मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो afeis.com पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अब जो प्री एग्जाम है जो अभी होने हैं उसका जो सेकेंड पेपर है जिसको जनरल स्टडीज पेपर टू कहा जाता है, और वैसे जो सच पूछिए तो कैट के नाम से बहुत ज्यादा एक तरह से प्रचलित हो गया है, फेमस हो गया है, तो सेकेंड पेपर की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे ये प्रोग्राम, ये ऑडियो वीडियो रिलीज कर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक रूप दे सकते हैं, उससे हो सकता है कि आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। यहां मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मुझे कुछ ऐसे मेल मिले हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि अब प्री एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो मैं अपने इस डेली ऑडियो में प्री के बारे में भी कुछ बातें करूं। सच है फ्रेंड्स कि इससे पहले मैं करता था और प्री के बारे में काफी जानकारियां जो भी मुझे आप लोगों के उपयुक्त लगती थी वो मैं अपने डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था। लेकिन अभी चूंकि इस पर इसी पर एक प्रिपरेशन को लेकर के मैंने पांच ऑडियो वीडियो रिलीज किए हैं और उसमें बहुत सी बातें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और सच पूछे तो जो इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं वो लगभग मैंने बताई हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो और बताई जा सकती हैं, जैसे पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, असेसमेंट पावर आप कैसे बढ़ाएंगे, ऑप्शन में कैसे सही ऑप्शन तक पहुंच सकेंगे, इस तरह के कुछ तकनीक हैं। तो डेफिनेटली उन तकनीक पर मैंने अभी जो ऑडियो वीडियो रिलीज हुए हैं उनमें बात नहीं की है। तो अब जैसे जैसे एग्जामिनेशन की डेट नजदीक आती जाएंगी तो मैं उन बातों को अपने इस डेली ऑडियो गाइडेंस में शामिल करूंगा। लेकिन फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जो ऑडियो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है उनकी आप मदद ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे आप लोगों का रास्ता काफी स्पष्ट हो सकेगा, आप को प्रिपरेशन करने की एक दृष्टि मिल सकेगी। तो मित्रों ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। फ्रेंड्स कल जब मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, शाम को जब हम लोग जा रहे थे तो सुबह हम लोगों ने अखबार में एक घटना पढ़ी थी कि किस तरीके से भोपाल से बाहर ही थोड़ी से बिल्कुल पास के ही गांव में एक बिजली गिरी, मानसून आने वाला है, बरसात हो रही थी, बिजली गिरी और उससे एक लड़के की मौत हो गई, बिजली गिरने से एक लड़के की मौत हो गई। और आज के अखबार में फिर जब मैं पढ़ रहा हूं तो देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अब तक बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं अपनी पत्नी से उस समय यही कहने लगा कि देखो जीवन का तो सिर्फ एक ही आधार होता है, किसी को जीवन मिलेगा उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है जीवन को हासिल करने का। हमारे माता पिता होने चाहिए, हमें जीवन मिल जाता है। लेकिन जहां तक मृत्यु का सवाल है, मृत्यु के हजारों कारण हैं, मृत्यु के लाखों कारण हैं, मृत्यु के करोड़ों कारण हैं। मतलब कि हम अनुमान नहीं लगा सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन सा कारण मृत्यु को लेकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जीवन इतना प्रबल है कि इसके बावजूद देखिए कि करोड़ों का कारण है मृत्यु के, लेकिन जीवन का सिर्फ एक कारण है, लेकिन जीवन फिर भी संसार में चल रहा है, लगातार बना हुआ है और लाखों साल से इस पृथ्वी पर मानव विचरण कर रहा है। नो डाउट दोस्तों कि जीवन की शक्तियां बहुत प्रबल हैं, लेकिन जो मृत्यु की जो शक्तियां हैं वो अपने आप में कम प्रबल नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मृत्यु की शक्तियां चाहे जितनी प्रबल हो लेकिन वो शायद बहुत आसान है। और लोग कह देते हैं कि जीना बहुत कठिन है, मुझे लगता है कि जीना शायद मृत्यु से भी ज्यादा आसान है। जीना अपने आप में कठिन क्यों है? सच पूछे तो जीने के तरीके को तो हम कठिन बनाते हैं। जब हम सोच सोच कर जीने लगते हैं, चाह चाह कर जीने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें सोच लेते हैं, फिर उनको पाने के जद्दोजहद में लग जाते हैं और फिर जब चीजें नहीं मिलती हैं तो अपने जीवन को कठिन समझने लगते हैं, तो वो हमारे जीवन को कठिन बनाते हैं, दुखद बनाते हैं, बोझिला बना देते हैं। अदरवाइज तो जीवन अपने आप में बहुत ही सरल है। जीवन को जीने का एक बहुत खूबसूरत तरीका रजनीश ने बताया था, आचार्य रजनीश ने बताया था। और सच पूछे तो उन्होंने जो अपनी किताब का नाम दिया था उसका नाम दिया था मैं मृत्यु सिखाता हूं। हालांकि उसमें वो बात जीने की कर रहे हैं, वो कला जीवन की सिखा रहे हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं मैं मृत्यु सिखाता हूं। उनकी पूरी थ्योरी इस बात पर आधारित है, इस दर्शन पर कि जिसको मरना आ गया वही जीना सीख सकता है। मरना आ गया का मतलब यह है दोस्तों कि जो मृत्यु को स्वीकार करता है। मृत्यु जीवन का एक सत्य है, प्रकृति का सत्य है। इस धरती पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अगर है तो बनी रहेगी, वो नष्ट होती ही होती है। और याद रखिए कि वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो जाना भी, कम से कम उस वस्तु का नष्ट हो जाना तो है ही। अब सोच करके देखिए कि हमारे यहां अवतार हुए, राम और कृष्ण और बुद्ध जैसे अवतार हुए, लेकिन वो अमर नहीं रहे, मृत्यु ने उन्हें भी ग्रसा। हमारे यहां पैगंबर हुए, ईश्वर के पुत्र हुए, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, मोहम्मद साहब ईश्वर के पैगंबर थे, संदेश वाहक थे, प्रवक्ता थे, लेकिन आप देखिए कि मृत्यु के आगोश ने सबको अपने में समाहित किया। यानी कि यदि मृत्यु सत्य है तो हम में ये ताकत पैदा हो जानी चाहिए कि हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति चला गया वो हमसे पहले लाइन में खड़ा था, उसकी एंट्री पहले हो गई, हम लाइन में पीछे हैं। नो डाउट दोस्तों कभी कभी दुर्भाग्य ऐसा भी होता है कि जो लाइन में बहुत पीछे खड़े हैं वो भी पहले, बहुत पहले चले जाते हैं, जिसे आप अकाल मृत्यु कह सकते हैं। अकाल मृत्यु हम कहते ही हैं, मतलब समय नहीं आया था लेकिन मृत्यु हो गई। सच तो यह है कि बिना समय आए किसी की मृत्यु होती ही नहीं है, लेकिन हमने अपने दिमाग में एक अनुमान सा लगा रखा है या एक अवलोकन के आधार पर एक फिक्स कर रखा है कि 70-75 साल तक की आदमी की उम्र होती है, तो यदि उसके बाद उसकी मृत्यु होती है तो वो सकाल मृत्यु है, मतलब समय आने पर मृत्यु हुई है, अदरवाइज समय से पूर्व मृत्यु हो गई है, हमारा अपना एक सामाजिक अनुमान है जो हमारे अपने अनुभव से निकला हुआ है, अदरवाइज समय तो अपने हिसाब से काम करता है। तो रजनीश ने जो बात कही थी मित्रों, वो यही बात कही थी कि हम दूसरों की मृत्यु को देखकर अपने मृत्यु का अनुमान लगाते हैं और भयभीत हो जाते हैं कि हमारी भी मृत्यु हो सकती है, और जिनमें ये भय पैदा हो जाता है वो जीवन के होते हुए भी हर क्षण उस मृत्यु को झेलते रहते हैं। निश्चित रूप से जब हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है तब हमारा मृत्यु बोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नो डाउट दोस्तों, जब हमारा अपना अपने बीच से कोई जाता है तो हमारे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक खालीपन, एक शून्यता वह दे जाता है। उससे हमारे संबंध थे, उससे हमारा इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, वो हमारे एक तरह से अस्तित्व का एक हिस्सा हो जाता है, और जब वह हमसे दूर जाता है, और ऐसी दूरी जो हमेशा हमेशा के लिए है, स्मृतियों से तो दूर नहीं जाता लेकिन शारीरिक तौर पर वो जब दूर चला जाता है तो जिस अंग से वो जुड़ा हुआ था वहां शून्यता तो आएगी, और वो अंग है स्मृतियों का और भावनाओं का, वहां एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि अब हम उस वैक्यूम को भरें कैसे। देखिए, जीवन प्रबल है और जीवन को जिया ही जाना चाहिए, ये ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत वरदान है। जीवन को जीने के दो तरीके हैं मित्रों, पहली तो यह है कि मैं अपनी शर्तों पर जीऊं, और दूसरा यह है कि जो मुझे मिला है मैं उसको जीऊं। अपनी शर्तों पर जीने के आधार पर हम जीवन को कठिन बना लेते हैं, और जो मुझे जीवन मिला है, जो मिल रहा है, जो दिया जाएगा, उसके आधार पर अगर हम जीते हैं तो जीवन सरल बन जाता है। और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है किसी के जाने पर, ये वैक्यूम सही मायने में मित्रों तात्कालिक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि घटना तुरंत की है तो घाव हरा है, जख्म हरे हैं, वो बहुत ज्यादा दर्द करेंगे, लेकिन समय में इतनी बड़ी ताकत होती है कि धीरे 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 जख्म भरने लगते हैं, और सच पूछिए तो वो जाने वाला फिर एक बहुत ही प्रेम भाव के साथ, एक श्रद्धा भाव के साथ हमारी स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, लेकिन समय उस जख्म को भरता ही भरता है। और मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है मित्रों कि जाने वाले को दी जाने वाली सर्वोत्तम श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम उसके जाने के बाद उसको अपनी स्मृतियों में बसाकर अपने आप को कितना सही रख सकते हैं, कितना संतुलित रख सकते हैं, कितना खुश रख सकते हैं। हालांकि ये जो मैं खुश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ये थोड़ा सा दुखद है कि किसी जाने के पर कैसे खुश रहा जा सकता है मित्रों, यही तो एक चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के जाने पर हमें खुशी है, सवाल ही नहीं उठता है। जाने का बहुत जबरदस्त दर्द है, वो क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती, वो हमेशा हमेशा के लिए वैक्यूम बन गया, लेकिन मुझे लगता है कि वैक्यूम में भी एक ताकत होती है, दूसरों को आकर्षित करने की ताकत होती है, दूसरों को अपना बना लेने की ताकत होती है, कहीं ना कहीं सच पूछे तो पूरी दुनिया तक फैल जाने की भी ताकत होती है। मित्रों, इस बारे में गौतम बुद्ध की एक बहुत अच्छी कथा है। एक महिला गौतम बुद्ध के पास भागती भागती आई, उसके बच्चे का निधन हो गया था, और उसने बुद्ध के सामने अपने बच्चे को, मृत बच्चे को रख करके कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और ईश्वर हैं, आप इसे जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा कि हाँ हाँ मैं इसे जिंदा कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पत्नी जो मां थी वो तो खुश हो गई कि अरे बच्चा मेरा जिंदा हो जाएगा। बोले हाँ, बस तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम तब तक ये काम करो कि गांव में जाओ और मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी कोई डेथ नहीं हुई हो, कोई मृत्यु नहीं हुई, वहां से सरसों के दाने ले आओ, तो उस सरसों के दानों से फिर मैं इस बच्चे को जीवित कर दूंगा। महिला बहुत खुश हुई कि अरे सरसों के दाने क्या बड़ी चीज है। वो अब घर घर में जाकर के पूछने लगी, सबसे पहला सवाल था कि क्या तुम्हारे यहां अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हर जगह से उसे जवाब मिला कि मृत्यु हुई है, यानी कि उसे कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। और इसके बाद जब वो लौट कर गौतम बुद्ध के पास आई, उसकी समस्या का समाधान हो चुका था। मृत्यु दोस्तों ये जीवन का बहुत ही कटु सत्य है, अनिवार्य सत्य है, सबसे पूछिए तो एक तानाशाही सत्य भी है, इसके सामने किसी का कुछ नहीं चलता। लेकिन जो तात्कालिकता है, जो तुरंत जो संकट पैदा होता है मित्रों, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम उस तात्कालिकता को कितने संतुलन के साथ बर्दाश्त कर पाते हैं। और यदि हम उस तात्कालिकता को बर्दाश्त कर लेते हैं, जो किया ही जाना चाहिए, तो आप देखेंगे कि भविष्य फिर अपने तरह से आपको आगे बढ़ाकर ले जाता है, बढ़ाकर ले जाता है। क्योंकि जीवन इतना प्रबल है कि जैसा कि मैंने कहा कि मृत्यु के करोड़ों कारण होने के बावजूद जीवन चलता रहता है, जबकि जीवन का सिर्फ एक ही कारण है, ये जीवन की प्रबलता है। और मुझे लगता है कि हम सबको जीवन की इस प्रबलता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो हम प्रबल हैं, कम से कम हमारे अंदर तो जीवन है। और इस जीवन के आधार पर हमें मृत्यु की उन शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए, स्थितियों ने जो हमारे लिए बना दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए और जीवन को निरंतर आगे बढ़ते देते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से दोस्तों, जो स्पिरिचुअलिटी होती है या ईश्वर होता है, जो भी आप कह लीजिए, उसे आप नाम देना चाहें, जो प्रकृति है, जो नियति है, आप उसे कुछ भी नाम दे दीजिए, वह इसमें बहुत मदद करता है। उसका नाम, उसका स्मरण, उसका आश्रय ऐसे समय में हमें बहुत ताकत पहुंचाता है। और सच यह है कि यह ताकत पहुंचाता ही है, ये कोई मन माने की बात नहीं है, केवल मन गढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जब प्लावन होता है किसी की मृत्यु पर, तो सच पूछे तो इमोशनल ही ज्यादा होता है, पूरी तरह से इमोशनल होता है। और ऐसे इमोशनल के समय में जब चारों तरफ बाढ़ आई हुई हो, मुझे लगता है कि इस तरह के स्पिरिचुअलिटी या ईश्वर या प्रकृति का जो नाम है हमें एक खंभे की तरह दिखाई देता है कि अब इस खंभे को पकड़ लें, इस बाढ़ को बह जाने दें, निकल जाने दें, इसके बाद फिर आगे तो हम संभल ही जाएंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं यही बात कहकर अब आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मौसम थोड़ा सा खराब होने के कारण मेरा जो गला है वो भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, और चूंकि थोड़ी सी शुरुआत है और मुझे लगता है कि जब मौसम ऐसा ही रहने लगेगा तो फिर गला ऐसा नहीं रहेगा, वो ठीक ठाक हो जाएगा, जरा उसका भी एडजस्टमेंट थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग जरा इसके लिए थोड़ा माफ कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में और आज के अखबारों में भी आपने देखा होगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो डोर हैं गवर्नमेंट ने और कई क्षेत्रों में ओपन कर दिए, कई क्षेत्रों में सरकार ने खोल दिए हैं, जिसमें सबसे मुख्य क्षेत्र हैं एविएशन, डिफेंस और फूड प्रोसेसिंग। देखिए फ्रेंड्स, उसमें कई क्षेत्र हैं लेकिन जानबूझकर मैं इन तीन क्षेत्रों के नाम आपको ले रहा हूं, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। सिविल एविएशन पॉलिसी कुछ ही दिनों पहले आई थी, गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर की थी, और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इस पॉलिसी का संबंध कैसे एक तरीके से ओपन अप से है और देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने से है। निश्चित रूप से फ्रेंड्स, जब हम FDI की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यह केवल पैसे की बात नहीं होती। शायद मैंने पहले भी कभी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन यहां मैं चूंकि एक अवसर है फिर से याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि विदेश के लोग हमारे यहां पैसा भेजें, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन के लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, एक तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो मेक इन इंडिया में दिखाई देगा आपको। आप पैसा नहीं भेज रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एविएशन सेक्टर में खोला, तो आप भारत में एक अपनी एयरलाइन कंपनी खोल रहे हैं, आपके 20-50 जो भी हैं एयरलाइंस हैं, और आप भारत में जहाज उड़ा रहे हैं, एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, या भारत से आप विदेश जा रहे हैं, जो कि भी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही कोई फैक्ट्री लगती है या एविएशन शुरू होता है, अब होगा क्या कि इसके लगते ही एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि फॉरेन का कोई व्यक्ति यहां आकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल देगा, मान लीजिए कि टमाटर से सॉस बनाने का उसने बहुत बड़ा कारखाना खोला, राइट? तो अब देखिए कि इसका फायदा क्या क्या होगा। सच पूछे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तीन कारणों से सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है उसको। नंबर एक, हमारे पास कैपिटल की कमी है, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम बड़े बड़े उद्योग लगा सकें, तो उसके लिए हमारे पास पैसा आ जाता है। दूसरी चीज होती है, वो होती है टेक्नोलॉजी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी किस लेवल तक पहुंच गई है हम कल्पना नहीं कर सकते, और भारत उस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में बहुत से क्षेत्रों में बहुत पीछे है। जैसे डिफेंस में हम काफी पीछे हैं, इसीलिए आपने देखा कि डिफेंस में भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई को और ज्यादा अलाउ किया गया है। तो जब कोई यहां इंडस्ट्री लगाएगा फॉरेन का व्यक्ति, तो साथ में वो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगा, तो हमारे पास कैपिटल हो गई, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई, और यहां आकर वह इंडस्ट्री खोलेगा। ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया और बात खत्म हो गई, आपको टेक्नोलॉजी वहां यहां आकर के इंडस्ट्री खोलेगा, और जब वो इंडस्ट्री खोलेगा तो उस इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज होंगे वो कहां के होंगे? बट नेचुरल है कि ठीक है, टॉप मोस्ट पर दो चार पांच विदेशी हो सकते हैं, वो अपने देश के लोगों को लेकर के आ जाए जिनको ज्यादा सही समझते हैं, लेकिन बाकी तो पूरा का पूरा जो लॉट होगा वो तो हम भारतीयों का ही होगा। आप नीचे से ले लीजिए, एकदम नीचे से मजदूर से लेकर के और थोड़ा सा ऊपर लेवल तक, टॉप में मत जाइए, लेकिन इवन कि हायर मैनेजमेंट तक भी आप चले जाएंगे तो इंडियंस होंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल भी आ गई, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ गई, और साथ ही साथ हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, रोजगार भी मिल गया। अब जब ये इंडस्ट्री शुरू होगी तो बट नेचुरल है कि ऐसा नहीं कि वो बना रहे हैं और बेच रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज दुनिया भर की शुरू हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, मार्केटिंग की एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। तो आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट कितना फैलता चला जाएगा, और फिर जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स मिलना भी शुरू होगा। कोई भी इंडस्ट्री है आखिर में वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स तो देगी ही, चाहे वो जिस रूप में दे, इनकम टैक्स के रूप में देगी, उत्पाद शुल्क के रूप में देगी, अभी अगर जीएसटी लागू हो गया तो जीएसटी के रूप में देगी। तो अब वो जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी उसका उसकी सेल हो रही है, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से जो एफडीआई होती है दोस्तों, एफडीआई जो होते हैं वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपने न्यूज में सुना होगा कि न्यूज में स्पेशली दो तीन चीजें मेंशन की गई। पहला तो यह कहा गया कि इससे रोजगार बढ़ेगा। अगर आप उसी न्यूज को दोबारा सुनेंगे तो आपको ये शब्द मिल जाएगा सुनने को कि इससे रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मैंने आपको बताया कि रोजगार कैसे बढ़ेगा। और वैसे मैं यहां आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो आप न्यूज में सुनते समय ना उसमें से इस तरह के वाक्य नोट कर लें। वाक्यों को नोट करने के बाद फिर उस पर सोचें। देखिए, जब हम किसी भी चीज को तुरंत सोचते हैं ना तो लगता है कि हाँ हाँ ये तो समझ में आ गया, लेकिन समझ में आ गई बात अलग है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी आई है कि नहीं आई है? समझ में तो आ गई बात आ गई, लेकिन जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आप देखेंगे कि आप अटक जाएंगे, या एक दो लाइन से आगे आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब भी न्यूज में ऐसी बातें आए तो आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर लें और उस पर विचार करना शुरू करें। जैसे यदि आज आपने सुबह का अखबार पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक स्टेटमेंट है, उसमें स्टेटमेंट है कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। कौन सी दोनों चीजें? कि एक तो महंगाई के दर पर भी नियंत्रण हो और दूसरी तरफ ब्याज दर भी कम की जाए, मतलब ब्याज की दर भी कम हो और महंगाई भी न बढ़े। तो ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। खासकर भारत के संदर्भ में उन्होंने बात कही है, इनडायरेक्ट में था कि भारत सरकार लगातार रिजर्व बैंक पर ये दबाव, मतलब दबाव तो नहीं कहना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रही थी, इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ब्याज दर घटाइए, ब्याज दर घटाइए। और वैसे भी भारत की जो ब्याज दर है दुनिया में सबसे ज्यादा ब्याज दरों में मानी जाती है, तो आप इसको घटाइए। लेकिन दूसरी ओर यह हो रहा था कि महंगाई भी न बढ़ने दी जाए, तो उसी पर स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि दोनों संभव नहीं है। अब आपने अखबार में यह स्टेटमेंट पढ़ लिया, सामान्य तौर पर समझ में आ गया, लेकिन इसको अब एक्सप्लेन कीजिए ना, इसको समझाइए। मान लीजिए कि इसी स्टेटमेंट को आपको 11th के लड़कों को क्लास में समझाना है, आप टीचर हैं तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बन जाइए थोड़ी देर के लिए टीचर और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, तब देखिए कि सही मायने में जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन होती है तब हो पाएगी, अदरवाइज प्रिपरेशन सच पूछे तो मैं नहीं कहता कि हो ही नहीं पाएगी, लेकिन थोड़ी से कठिन हो जाएगी, इससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो आपने न्यूज में सुना कि इससे रोजगार बढ़ेगा, फिर आपने एक एक्सपर्ट की कमेंट भी सुने कि इससे विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा, क्योंकि एफडीआई में जो लोग भेजेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा में भेजेंगे ना, रुपया में थोड़ी भेजेंगे, वो डॉलर में आएगी, अगर इंग्लैंड से कोई आता है तो पाउंड में आएगा, जर्मनी से कोई लगाता है तो मार्क में आएगा, वो अपनी विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास बढ़ेगा, जो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी आएगी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्नोलॉजी कैसी आएगी, और एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि डिफेंस और फार्मास्यूटिकल्स या दवाइयों का जो है, इसमें हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे पास इसकी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, यह बात उन्होंने कही। तो मित्रों, इस जो अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का आपने स्टेटमेंट सुना कि इस डिसीजन के बाद भारत जो है सबसे खुली एफडीआई वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, जो अपने यहां सबसे ज्यादा एफडीआई के लिए जिसने अपने रास्ते खोले हैं। मित्रों, आप कह सकते हैं कि जब इतने बड़े फायदे हैं तो सरकार इनको ओपन क्यों नहीं करती है, इसके पीछे दूसरे रीजन है। आप अगर अपने क्षेत्र को ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एविएशन में विदेशी कंपनी को आपने बुला लिया, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी कंपनियां उनसे कॉम्पीट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। एक तो हमारे यहां इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका भट्ठा बैठ जाएगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा, क्योंकि विदेशी के पास हाई टेक्नोलॉजी है और उनके पास अपने काम करने की प्रणाली है। हमारे यहां अपने हैं जेट एयरवेज है और दूसरे इंडिगो है, दूसरे एयरलाइंस है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने उद्योग इनके आने से चौपट हो जाएंगे और पता लगा कि हम पूरी तरह से अब विदेशी उद्योगों पर ही निर्भर हो गए, हमारा अपना कुछ रह ही नहीं गया। इसीलिए किसी भी क्षेत्र को ओपन करना भी उतना आसान नहीं होता है। मित्रों, एक बात मैं यहां और आपसे कहूंगा जो एनालिटिकल पार्ट है एफडीआई का, और सिविल सर्विस में पिछले कुछ सालों से इस पर क्वेश्चंस आ भी रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में। जैसे हम कहते हैं कि एफडीआई के आने से रोजगार बढ़ेगा, न्यूज में आपने सुना, लेकिन क्या यह सच है? आपको यह देखना पड़ेगा। इसलिए साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा आएगा, राइट, इंडस्ट्री लगेगी और उसमें टेक्नोलॉजी होगी। तो अगर किसी इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जो यूज की ही जाती है, तो सवाल यह है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना कितनी रहेगी। पता लगेगा कि 1000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लग गई है और उसमें एम्प्लॉयमेंट मुश्किल से 500 लोगों को मिल रहा है, क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ऑटोमेटिक है। जैसे आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा फ्रेंड्स, कि जो रोबोट हैं, इन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने एक चैलेंज पैदा कर दिया है, और यह माना जा रहा है कि आने वाले 5 साल में 65% जो काम है वो रोबोट करने लगेंगे। मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, जो आदमी कर रहा है, आदमी को रोबोट रिप्लेस कर देगा 65%। तो आदमी क्या करेगा? आपको एक घटना, आप लोगों ने अखबार में पढ़ी भी होगी, मुझे अवसर नहीं मिल पाया उस पर मैं चर्चा नहीं कर सका, कि स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम कराया गया, जनमत कराया गया, क्योंकि सरकार अब वहां के लोगों को रोजगार दे ही नहीं पड़ी, और स्विट्जरलैंड जहां की आबादी 80 लाख के करीब है, छोटा सा देश है, सोच के देखिए, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, अब क्या किया जाए, क्योंकि सब चीजें ऑटोमेटिक होती चली जा रही हैं। तो सरकार को यह लगा कि भाई लोगों को कम से कम खाने पीने की सुविधा हो सके तो लोगों को भत्ता दे दिया जाए, एक बेसिक भत्ता दे दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। तो उसने जनमत कराया कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, और आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्विट्जरलैंड के लोगों ने मना कर दिया कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं कि हमको काम न करना पड़े और हमको भत्ता मिले। मित्रों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये, इसे आपको बल्कि ध्यान रखना चाहिए, आप इसको ऐसे में और दूसरी जगह आप इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आदमी सिर्फ ब्रेड से जिंदा नहीं रह सकता कि उसका पेट भर गया और जिंदा रहेगा। अरे भैया, उसके पास 24 घंटे का वक्त है, 8 घंटे सोएगा, बाकी समय क्या करे, 16 घंटे उसको काम चाहिए ताकि उसका वक्त गुजर सके, उसके अंदर कुछ करने की भावना होती है, वो फुलफिल हो सके, वो क्रिएटिव पर्सन है, वो मशीन नहीं है, वो क्रिएटिव पर्सन है, वो अपने क्रिएशन में कुछ करना चाहता है, कुछ गढ़ना चाहता है। तो आप अगर उसको वो अवसर नहीं देंगे तो क्या करेगा कि वो खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, कितने दिनों तक, कितने लोग, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज बहुत पसंद आ जाए, लेकिन हर को तो पसंद नहीं आएगा, तो ह्यूमन बीइंग को आपको ह्यूमन बीइंग की तरह लेना पड़ेगा। तो मित्रों इसी के संदर्भ में मैंने यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कही है। दूसरी जो खबर थी और आखिरी खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर थी। दोस्तों इसके बारे में मैं अब ज्यादा बात करना जरूरी नहीं समझता क्योंकि अखबार भरे पड़े हैं योगा के बारे में, अलग अलग तरीके के डायमेंशंस के आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप सब ने उसको पढ़ा ही होगा, और इसलिए मैं योग पर बात अब नहीं करने जा रहा हूं। मुझे उड़ता पंजाब फिल्म के आधार पर कुछ बातें आप लोगों से करनी थी और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप सब ये फिल्म देख लें, बेहतर होगा और हम इस पर बात करेंगे। तो मित्रों जैसे ही वक्त मिलेगा, मुझे अपना वायदा याद है, और जैसे ही जिस दिन भी मुझे थोड़ी सी भी सुविधा मिली कि आज न्यूज कम है और इस पर हम लोग बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उस पर बात करूंगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं इस बारे में भूल गया हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं जिसमें मैं आपको विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ब्रिटेन को अभी जब ब्रिटेन में अभी 23 जून को ही है शायद एक जनमत संग्रह कराया जाना है कि ब्रिटेन को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अलग हो जाना चाहिए या नहीं, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में जबरदस्त रूप से प्रतिक्रिया हो रही है। मैं इस पर आप लोगों से बात नहीं कर सका हूं। तो आज एक बहुत अच्छा लेख है इसी मुद्दे पर जो दैनिक जागरण में छपा है, बहुत ही खूबसूरत लेख है हर्ष वी पंत जी का, मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये लेख आप लोग देख लेंगे। और एक लेख इंडियन एक्सप्रेस का है जिसमें अशोक गुलाटी जी का, खासकर हमारी सरकार ने जो कहा है कि 2022 तक वो किसानों की आय को दुगुनी कर देगा, उस पर एक अच्छा एनालिटिकल लेख अशोक गुलाटी और श्वेता सैनी जी का है, आप इसको जरूर देखिएगा। दूसरे और भी क्लिपिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो आप सभी ईमेल लिखने वाले साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मित्रों इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सुरेश काशीपुर उत्तराखंड से, पवन चतुर्वेदी, अखिलेश कुमार डेहरिया चेन्नई से, आरती गुप्ता बेतिया बिहार से, कुमार राम न्यू दिल्ली से, नीरज कुमार मीना अजमेर से, अभिनव दिल्ली से, आनंद कुमार झा आप भी दिल्ली से, नीरज पाल न्यू दिल्ली से, ओपी जाट, आशीष कुमार भागलपुर बिहार से, दीपक सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, गौरव सिंह जामुई बिहार से, मनीष सिंगल चूरू से, अमृता कश्यप, प्रियंका लिखार नागपुर महाराष्ट्र से, अधिकरण महतो और अबू रेहन गोपालगंज बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।